नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणवामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत ययुस्त्रियः ते निमीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। सूत उवाच शीलसूत गोस्वामी ने कहा अथा इसके बाद अपने स्वजनों के दाह संस्कार आदि करने के बाद ते वे संपरेतानां कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरे हुए स्वानां अपने स्वजनों को उदकां जब इच्छता अभिलाषी दातुं देने के लिए तर्पण करने के लिए सकृष्णा कृष्णा द्रौपदी जी के साथ गंगायाम गंगा जी में पुरस्कृत्या आगे करके ययुः गए स्त्रियः स्त्रियों को आगे करके इस परम पावन क्षेत्र में जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवतम में सप्तम स्कंध के 14वें अध्याय में श्री नारद जी प्रवचन किए हैं। वह प्रवचन राजसूय यज्ञ में हुआ था, तो उसमें वे बताते हैं कि श्रेय कामी व्यक्ति को विशेष देश का और विशेष काल का सेवन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, भजन या शुभ कर्म कोई भी विशिष्ट देश में करना चाहिए और विशेष काल में करना चाहिए। तो उन्होंने जब देश का नाम लिया है तो उसमें कुरुक्षेत्र का भी नाम रखा है नारद जी का, कुरुक्षेत्र। और काल में जैसे अक्षय नवमी है कार्तिकी, या वैशाख की अक्षय तृतीया है, इस प्रकार है कई काल का उल्लेख है। काल अपने गुण से किसी कर्म को सफल बनाता है और देश भी अपने गुण से सफल बनाता है। तो इस कुरुक्षेत्र के विषय में शास्त्रों में अनेक वाक्य दिए गए हैं इसकी महिमा बताने में। और सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि महाराज युधिष्ठिर का युद्ध होने वाला था कौरवों के साथ, अर्थात कौरव और पांडवों का युद्ध यहाँ होने वाला था, तो यही देश निश्चित किया गया इसलिए कि यहाँ धर्म की विजय होती है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं अपने सचिव से, संजय से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सवह मामका पांडवास चैवक्य में पूर्वत संजय, हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित होकर हमारे पुत्र और पांडु के पुत्र गण क्या किए। उनके मुख से निकल रहा है कि जुजुत्सव, युद्ध के अभिलाषी दोनों दल जुटे थे, तो वे जुट करके क्या किए, क्या किए, युद्ध करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन यह भी कह रहे युद्ध के अभिलाषी जुटे थे तो क्या किए। सबसे पहले धृतराष्ट्र के मुख से धर्म क्षेत्र निकला। धृतराष्ट्र का हृदय धक धक कर रहा था, उसके पुत्र महा अधार्मिक पापी हैं और युद्ध धर्म क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए धार्मिक लोगों की ही विजय होगी निश्चित। वो बड़े संदेह में थे और यह प्रश्न भीष्म पितामह के गिरने के बाद उन्होंने किया था। 10 दिन युद्ध हो चुका था तब वे प्रश्न कर रहे हैं। तो जब सेनापति 10 दिन युद्ध करके और निहत हो गया, गिरा दिया गया, इसके बाद धृतराष्ट्र महाराज का हृदय और व्याकुल हो गया। यह भूमि इतना खतरनाक है कि यह धार्मिक को निश्चित विजय देगा, ये भूमि देगी विजय, वो सोचने लगे और पछताने लगे कि युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं होना चाहिए था। शायद कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं हुआ होता तो हो सकता है पापी लोग कौरव लोग जीत सकते थे, लेकिन यह भूमि यह क्षेत्र धर्म को ही विजय बनाता है। भले देर होती है लेकिन इस भूमि का यह गुण है, इसीलिए इसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कहा गया। बोलने वाले धृतराष्ट्र महाराज है, उनको शंका हो रही है। तो यह भूमि कुरु महाराज की भूमि है। चंद्रवंश में आगे चलकर कुरु नाम के एक राजा हुए, वास्तव में वे हस्तिनापुर के राजा थे। हस्तिनापुर पूरे भारत में विस्तृत राज्य था वास्तव में, विशेष करके उत्तर भारत में। जब कुरु महाराज इस वंश में हुए तो इस क्षेत्र का नाम ही पूरा हस्तिनापुर दिल्ली इंद्रप्रस्थ आदि सब मिला करके ये सब कुरुक्षेत्र कहते हैं। ऐसे उस समय जब युद्ध हुआ था तो यहाँ कोई गांव नहीं था, यहाँ कोई बस्ती नहीं थी, यह मैदान था, परंतु कुरुक्षेत्र एक राज्य को कहा जाता है, पूरा कुरु महाराज का क्षेत्र है। तो इस तरह से इस कुरुक्षेत्र में अनेक महान यज्ञ हुए हैं। भगवान परशुराम ने भी यज्ञ किया था और सरोवर बनाया था जिसे ब्रह्म सरोवर या राम सरोवर कहते हैं, और श्री भगवान ने यहीं पर भगवद गीता का उपदेश किया था उस प्रसिद्ध महाभारत युद्ध में, और अनेक राजाओं ने यहाँ अनेक यज्ञ किया है, बड़ा बड़ा कार्य किया है। और विशेष करके जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय इस क्षेत्र में आने की बात कही जाती है। मनुष्य से कोई न कोई गलती, पाप, अपराध, अन्याय होता ही रहता है, परंतु यह क्षेत्र, यह भूमि मनुष्य को सब प्रकार के अपराधों से, पापों से मुक्त कर देता है। इसका यह सहज प्रभाव है, इसीलिए सूर्य ग्रहण में लाखों लाखों लोग आते हैं यहाँ ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना में संघ के संस्थापक आचार्य हैं, वे चाहते थे कि कुरुक्षेत्र में एक बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बने, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का एक महान केंद्र बने। तो आजकल यहाँ के जो अध्यक्ष हैं सब इस कार्य में लगे हुए हैं और जरूर यह भूमि उनको सफलता देगी। ये क्षेत्र ही ऐसा है कि धर्म विजयी होता है, भगवान का यहाँ से प्रचार होता है। ऐसे भूमि में बैठकर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है। वैसे श्रीमद् भागवतम तो बहुत बड़ा ग्रंथ है और अल्प समय में इसे कभी भी कहना संभव नहीं है, परंतु श्रीमद् भागवतम के कुछ प्रसंग को यहाँ लिया जा रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है कि बड़ी ही एकाग्रता के साथ इसे ग्रहण करेंगे, सुनेंगे। इस कुरुक्षेत्र की घटना है, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, वह युद्ध 18 दिन चला और 18 दिन में दोनों पक्ष के लोग लगभग समान रूप से मारे गए। कौरवों में 3 व्यक्ति बचे थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, और पांडव पक्ष में 7 व्यक्ति बचे थे, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव, बस इतने ही बचे। एक तरफ 7 औक्षणी सेना थी पांडवों के तरफ और कौरवों के तरफ 11 औक्षणी सेना थी, लेकिन जिस पक्ष में भगवान रहते हैं वह पक्ष संख्या पर आधारित नहीं होता है विजय पाने के लिए, भगवान को होना चाहिए। तो इस तरह से सारे वीर युद्ध में मारे गए और अंत में अश्वत्थामा द्रौपदी जी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दिया। वास्तविकता यह है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों की 1 औक्षौहिणी सेना बची थी, 18 दिन तो वे लोग सो गए, 18 दिन युद्ध करते करते थके मांदे थे और सो गए। और ये बहुत लंबी कथा है, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ये मिल करके सोई हुई सेना का संहार कर दिए रात्रि में। उसमें द्रौपदी के 5 पुत्र भी बचे थे, उनकी भी हत्या कर दिया अश्वत्थामा, उनका सिर काटा। बहुत दुखद घटना है वो। सवेरे जब पता चला पुत्रों के वध का, तो द्रौपदी विलाप करने लगी, तो फिर अर्जुन प्रतिज्ञा की कि तुम्हारे पुत्रों की जिसने हत्या किया है उसका सिर मैं लाऊंगा तुम्हारे पास। वो गए अश्वत्थामा को पकड़ने, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु बाद में अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। पकड़ करके वो सिर को काट कर नहीं लाए, पूरे शरीर के साथ ही सिर हाजिर कर दिए। पकड़ मारने नहीं चाहते थे क्योंकि गुरु का पुत्र था, वो द्रोणाचार्य का पुत्र था, अतः गुरु पुत्र की हत्या नहीं कर। द्रौपदी के सामने लाए तो द्रौपदी जी ने तो उसको बांध करके लाना भी सहन नहीं किया। वो कहे कि आप गुरु पुत्र को बांध कर कैसे लाए, इतनी महान महिला थी द्रौपदी, इसीलिए तो भगवान उसे सखी कहने में, बहन कहने में आनंद का अनुभव करते थे। तो यह घटना घट गई। तब सूत गोस्वामी कहते हैं कि पांडव गण अपने स्वजनों का निर्हरण आदि किए, दाह संस्कार किए, और दाह संस्कार करने के बाद, दाह संस्कार कुरुक्षेत्र में ही हुआ, इसी युद्ध भूमि में, और इसके बाद वे गए गंगा जी के तट पर। हस्तिनापुर आज भी है मेरठ के पास, वहाँ गए। यहाँ से कथा प्रारंभ किया जा रहा है कि अथते सम परेता नाम स्वानम उदक विच्छता दातुम सकृष्णा गंगा यम पुरस्कृत जयो स्त्रिय। अपने स्वजनों का दाह संस्कार आदि करने के बाद पांडवगण अपनी पत्नी श्री द्रौपदी जी के साथ हस्तिनापुर गए गंगा जी के तट पर। क्या करने के लिए? उदकम दातुम, जल देने के लिए, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद प्रत्येक मृतात्मा, प्रत्येक जीव जल की अभिलाषा करता है, जलाभिलाषी होता है। इसीलिए हमारे वैदिक संस्कृति में, हिंदुओं में जल देने की प्रथा है, जल देते हैं, यह बहुत आवश्यक कार्य है। और जल देना, इसके साथ और भी श्राद्ध आदि जो कर्म होते हैं वो करने के लिए गंगा जी के तट पर गए। इच्छतान लिखा गया है, इच्छतान का अर्थ है कि मृतक अपने स्वजन गण जल की अभिलाषा कर रहे थे कि हमारे वंश का, हमारे से संबंधित कोई व्यक्ति हमको जल देगा। अस्ते संपरेतान स्वाना उदक में चेतन धातुम से कृष्णा गंगायाम पुरस्कृत गए स्त्री, गंगा जी के तट पर गए। कैसे गए? सकृष्णा, सकृष्णा का अर्थ है कृष्ण के साथ, भगवान के साथ, अथवा द्रौपदी को भी कृष्णा कहते हैं, कृष्णा के साथ गए। स्त्रियों को आगे करके, और भी जो स्त्रियां थीं पांडवों के संबंध में स्त्रियां, तो उनको आगे करके गए, यही विधान है। जब स्वजनों को जल देने जाना हो तो स्त्रियों को आगे करके चलना चाहिए, इसीलिए कहते हैं स्त्रिय पुरस्कृत्य, पुरह का अर्थ सामने, कृत्य का अर्थ करके, स्त्रियों को सामने करके गंगा जी के तट पर गए। वहां पर ते निमीयोदकम सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आपूता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। वहां जाकर जल दिए अपने स्वजनों को। उस समय ऐसा हुआ कि धौम में मुनि गुरु महाराज पांडवों के वहीं पर उपस्थित थे और वे मंत्र पढ़ते थे, इसको जल दो, इसको जल दो, अर्जुन को कहे कि इसको जल दो, अभिमन्यु को जल दो, और भी जिसके जो भी स्वजन मरे थे उनको जल देने के लिए कहे। यहाँ तक धृतराष्ट्र महाराज को भी कहा गया कि आप अपने 100 पुत्रों को जल दीजिए। तो धौ में ऋषि बोल रहे थे और उसके अनुसार जल दिया जा रहा था। जल देते समय अपने स्वजनों का जब नाम बोला जाता था तो और अधिक याद आती थी। अभी अभी कुरुक्षेत्र में वे मृत हुए थे तो उनका रूप है, उनका गुण है, उनका स्वभाव सब कुछ स्मरण में आने लगता था। इसलिए विलप्य च भृशम, बहुत अधिक विलाप कर रहे थे। विलाप का अर्थ है कि अपने स्वजन के गुण को कह कह करके, नाम ले ले करके और गुण बता बता करके रो रहे थे सब लोग। ते निनियोदकम, निनिय का अर्थ दत्वा, वे अपने स्वजनों को जल दे करके और बहुत विलाप कर रहे थे, रो रहे थे गंगा जी के तट पर बैठ करके। कोई कोई गंगा में खड़े होकर के रो रहे थे, छाते पीट रहे थे, और कोई गंगा जी के तट पर बैठे थे, विलाप कर रहे थे। भृशम, भृशम का अर्थ है अत्यंत। सुख गोस्वामी कहते हैं कि बहुत अधिक विलाप कर रहे थे। और पुनः आपलुता हरिपाद रज पूत शरीर जले, हरिपादाब्ज, हरिपादाब्जयो रजो भी पूता या सरित गंगा तस्या जले आपलुता। भगवान के चरणों के रज से श्री गंगा जी परम पावन नदी है, परम पावन। तो गंगा जी के जल में पुनः आपलुता। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि इसका अर्थ है कि पहले स्नान किए और फिर विलाप करने के बाद भी स्नान किए। तो स्वाभाविक है, अपने स्वजनों को जल देने के लिए पहले गंगा जी में भी स्नान किए। जितने लोग थे, स्त्रियां या पुरुष, सभी गंगा जी में स्नान किए, स्नान करके जल दिए, तर्पण किए और बहुत विलाप किए। और विलाप के बाद अब स्वाभाविक समझते हैं कि इतना आंसू गिरता है, मुख से लाला गाज निकलता है, तो कई प्रकार से आहत हुए थे, तो फिर से स्नान किए गंगा जी में। और इस बार जो स्नान किए तो उसके विषय में आपलुता शब्द प्रयोग किया जा रहा है कि शरीर को पूरा डुबा करके उस महापावन जल में जो भगवान के चरणों के रज से पवित्र है, उस जल में स्नान किए। रोने पर नाक से जल का गिरना, मुख से, आंखों से, स्वाभाविक होता है। इसके बाद गंगा जी में स्नान किए, तो गंगा जल की स्थिति महिमा को सुख गोस्वामी कह रहे हैं। हरिपादाब्ज रज पूत सरित जल है, भगवान हरि के, विष्णु के, श्री कृष्ण के चरण कमलों के रज से गंगा जी अत्यंत पावन है। ऐसे पावन गंगा जी के जल में आपलुता है। पुलुता का अर्थ है डूबना, आ का अर्थ है सम्यक, खूब अच्छा से स्नान किया। यद्यपि अपने स्वजनों के विरह से, दुख से शरीर दग्ध था, मन दग्ध था, लेकिन फिर भी भगवान के परम पावन चरण कमलों से संसिक्त गंगा जी के जल में स्नान किया। तो संसार में कुछ भी दुख हो, विपत्ति हो, पर भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। श्रीपद वल्लभाचार्य जी अपनी टीका में लिखते हैं, हरि पादाब्ज रज पूत शरीर जले। वे कहते हैं कि शायद किसी के मन में ऐसा हो सकता है कि भाई गंगा जी तो बिल्कुल शुरू में भगवान के चरण से निकली हैं और गंगा जी में अनेक जलांतर का समावेश है, अनेक जल मिले हुए हैं, तो शायद गंगा जी का प्रभाव कम हो सकता है। एक तो बहुत काल बीता और अनेक नदियां गंगा जी में गिरती हैं। अरे कहते हैं कि इसका अर्थ यह भी है कि महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को ऊपर स्नान करने के लिए कहे, जिधर से धारा आती है गंगा जी की, ऊपर स्नान करने के लिए कहे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों के रज को धोकर गंगा जी बह रही थी और उसी में सब स्नान कर रहे। यह भाव था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के रज से गंगा जी और पावन हो गई। तो ऐसे हरिपादाब्ज रज, हरिपादाब्ज रज पूत सरी जल, भगवान के चरण कमलों से जो नदी परम पवित्र हो गई है उसके पावन जल में गंगा जी के जल में स्नान कर रहे हैं। अपने संबंधी हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए वो भी स्नान कर रहे थे, वो भी जल दे रहे थे। वो सबसे ऊपर स्नान कर रहे थे, जहाँ लोग स्नान करते थे उसके ऊपर स्रोत में स्नान कर रहे थे। तो भगवान के श्री विग्रह को धो करके, उनके चरण कमल को धो करके गंगा जी का पानी आ रहा था, इसलिए और अधिक पवित्र हो रहा था, ये कहने का आशय है। आपलुता हरिपादाब्ज रज पूत सरी जल, तो स्नान करने के बाद फिर भी विलाप नहीं रुक रहा था, शोक नहीं जा रहा था। तब सूत जी कहते हैं, तत्रासेनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां पुत्रां कृष्णां च माधवः शान्तयामास मुनिभिर् हतबन्धुं सुचार्पितां भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियां। वहां पर माधवः मधुवंशी जदुवंशी भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे किनको, हत बंधुन सुचार पिता, जिनके बंधु मारे गए थे, जिनके संबंधी मारे गए थे, ऐसे युधिष्ठिर आदि, धृतराष्ट्र महाराज आदि, भीमसेन आदि, ये लोग बहुत सुचार पिता शोक में ग्रस्त थे, रो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के लिए यह बात कही जा रही, हत बंधु सुचार पिता, भगवान ने देखा कि इनके बंधु मारे गए हैं युद्ध में, इसलिए सब शोक में ग्रस्त है, विशेष करके कौन कौन, धृतराष्ट्र महाराज रो रहे थे गंगा जी के तट पर, क्योंकि उनके 100 पुत्र मारे गए थे। तत्रासीनम कुरुपति, यहाँ कुरुपति का अर्थ है युधिष्ठिर महाराज किया गया है, युधिष्ठिर सहानुजन भीमादि भाइयों के साथ युधिष्ठिर महाराज विलाप कर रहे, रो रहे थे। युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब लोग रो रहे थे, और धृतराष्ट्र महाराज रो रहे थे। गंधारिन पुत्र शोकार्ता, और पुत्र शोक से आर्त अत्यंत दुखी गंधारी रो रहे थे, प्रथम कृष्णाम से माधव, और इसके साथ ही साथ पुत्र शोकार्ता तीनों का विशेषण है, गंधारी, प्रथा और कृष्णा, तीनों पुत्र शोक में विवाह हुआ, च से सुभद्रा आदि लेना चाहिए। तो गंधारी के 100 पुत्र मारे गए थे, इसलिए बेचारी बहुत विलाप कर रही थी, और प्रीथा का पुत्र मारा गया था, कुंती का, कुंती को पता था कि कर्ण उसका पुत्र है, कर्ण की मृत्यु से वह बहुत दुखी थी। जेठ भाई, जेठ पुत्र मारा गया था, कुंती ने जन्म दिया था कर्ण को विवाह के पहले ही भगवान सूर्य के द्वारा, तो वो पुत्र के सुख में विवाह थी। और कृष्णा, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए थे सही अवस्था में अश्वत्थामा के बाद, और 14 महारथियों ने मिल करके इस कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु का वध किया था। अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था। इस कारण से सुत गोस्वामी यहाँ कुछ का नाम लेकर के बता रहे, ये लोग बहुत दुखी थे, गंधारी, कुंती और द्रौपदी तथा सुभद्रा, ये बहुत दुखी थे, इनको कौन सांत्वना दे, अपने सारे स्वजन तो मारे गए थे युद्ध में। आपने सुना ना कि इस कुरुक्षेत्र में केवल एक पक्ष में 3 व्यक्ति बचे थे और एक पक्ष में 7 व्यक्ति, कौन सांत्वना दे इनको। तो माधव लक्ष्मी जी के धव माने पति, माँ माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति श्री भगवान कृष्ण सांत्वना दे रहे थे, समझा रहे थे शोक नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, क्या किया जाएगा, कुछ बस नहीं चलता है लोगों का। और भी मुनि भी, और मुनि लोग भी थे, भगवान वेदव्यास देव और धौम्य मुनि और अन्य भी मुनि थे जो सांत्वना दे रहे थे, लेकिन मुख्य थे भगवान कृष्ण। इसलिए ये कह रहे सांत्वया मास मुनि भी हतबंधन सुचार के, भगवान श्री कृष्ण को माधव कहा जा रहा है, माधव सांत्वना दे रहे थे और इसके साथ साथ मुनि लोग भी दे रहे थे सांत्वना, समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् अप्रतिक्रियं। इस संसार में भूतेषु प्राणीषु प्राणियों पर किस तरह काल की गति है जिसको रोका नहीं जा सकता है, सांत्वना में यही बात मुख्य थी। भगवान समझा रहे थे कि देखो भैया, युधिष्ठिर को और धृतराष्ट्र महाराज आदि को, कुंती को, सबको समझा रहे थे कि देखो तुम बहुत काल तक भी रोते रहोगे तो रोने से कोई भी अपना मरा हुआ बंधु लौटेगा नहीं। आज तक संसार में कितने लोगों के स्वजन मारे गए, कितने लोग विलाप किए, लेकिन क्या किसी के विलाप से किसी का स्वजन लौटा है? अरे जिन्होंने रथ के चक्का से समुद्र बना दिया, ऐसे प्रियव्रत महाराज को भी काल ने खा लिया, आज नहीं बचे। इस पृथ्वी को समतल करने वाला व्यक्ति, सबके जीविका की व्यवस्था करने वाले पृथ्वी महाराज नहीं रहे, काल इतना बलवान है। तो इतने रोने से, हाहाकार करने से कोई भी व्यक्ति लौटेगा नहीं, और इसके विपरीत अपना शरीर खराब हो रहा है, इसलिए अपना कर्म करना चाहिए, जो अपनी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसे पूरा करना चाहिए। ये रोना नहीं चाहिए, रोने से ठीक नहीं है, कोई भी लौटेगा नहीं, इस तरह से बातें कह रहे थे, भगवान समझा रहे थे। जीवों पर काल की गति को बताना है, काल किस तरह से किसी व्यक्ति को जन्म देता है, बड़ा करता है, बूढ़ा बनाता है और अंत में काल ही मार देता है। आज तक जितने लोग इस संसार में जन्म लिए वे सब मरे, सबको काल ने मार दिया। ये सृष्टि स्थिति प्रलय ये काल करता रहता है, जब काल इस तरह से परम बलवान है तो क्या करेंगे। समझा रहे थे कि देखो इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को रोकने के लिए कितना प्रयास किया गया, भगवान समझा रहे थे कितना प्रयास किया गया, कितने ऋषि लोग लगे थे कि कौरव पांडव में युद्ध न हो। भगवान ने यह भी कहा कि स्वयं मैं भी लगा हुआ था, मैं संधि दूत बन करके प्रयास कर रहा था कि युद्ध न हो, लेकिन ये कुरुक्षेत्र का युद्ध आकर उपस्थित हो ही गया। कितने लोग लगे रहे, भगवान वेदव्यास समझा रहे थे, मैत्रेय जी समझा रहे थे, संजय समझा रहे थे, विदुर जी समझा रहे थे, कितने लोग समझा रहे थे दुर्योधन को, कितने लोग समझा रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि किसी मनुष्य के प्रयास से, किसी देवता के प्रयास से एक काल की चाल रुक नहीं सकती है, अप्रतिक्रिया, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इसमें किसी का व्यक्तिगत दोष नहीं है, ये होने वाला था, होनहार है, होकर के ही रहता है। अतः आप लोग चिंता मत कीजिए, आगे का जो काम है उसे कीजिए, इस तरह से श्री भगवान समझा रहे हैं। जहां भगवान समझा रहे हैं तो क्यों नहीं लोग समझ जाएंगे, तो समझ गए, सब दूर हो गया। वास्तव में कृष्ण साथ में थे, तो आनंद ही आनंद था। बाद में लोग स्वजनों को विसार दिए, भूल गए, क्योंकि सबसे बड़ा स्वजन आनंद घन, आनंद के स्रोत अपने साथ थे, तो सुख क्यों नहीं दूर हो जाएगा। तो इस तरह से सुख दूर हुआ, इस शोक दूर करने की बात कहकर अब संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया इसका वर्णन करते हैं। साधयित्वा जात शत्रु स्वं राज्यं कृतवै हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः पचस्पर्श क्षतायुषः याजयित्वा सुमेधैस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पकैः तद्यशः पावनं दीक्षु सतमन्योरिवातमो। शुक जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार सोम राज्य जो युधिष्ठिर महाराज का राज्य था, पितृ पितामह की परंपरा से वास्तव में राज्य युधिष्ठिर का था, इसलिए शुक जी कहते सोम राज्य महाराज पांडु का कमाया हुआ राज्य था और उनके पुत्र थे पांचों भाई पांडव, इनका राज्य था, युधिष्ठिर का ही राज्य था। लेकिन कितवई साधित्वा जात शत्रु हो सोम राज्य कितवर हृतम, लेकिन धूर्तों में खास करके शकुनी जो जुआ के दाव पेच में बहुत प्रवीण था और बहुत कपट करता था, वो ठीक से वैध जुआ नहीं खेलता था, वो पटान किसी न किसी तरह से जिताता था दुर्योधन को। उसको सुख जी कितवई कर धूल, धूर्त थे, बदमाश थे, एक धूर्तों का ग्रुप था जिसमें दुशासन, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी, सबसे बड़ा शकुनी, बहुत बदमाश व्यक्ति थे और धूर्त था, कपटी। तो इन कपटियों में मिल करके महाराज युधिष्ठिर का सोम राज्य हृतम, अपना इनका राज्य था, उसको हर लिया। कितने दिन हरे रहा? 12 वर्ष और एक वर्ष 13 वर्ष। 12 वर्ष पांडव लोग अपना राज्य छोड़कर वनवास किए और 1 वर्ष के लिए ऐसी शर्त थी, 13वें वर्ष के लिए 1 वर्ष तक गुप्त रहना है और विपक्ष पता लगाएगा, कौरव पता लगाएंगे कहाँ है, अगर पता लग गया तो पुनः 12 वर्ष बना जाना। किस संकट के साथ पांचों भाइयों ने वनवास की अवधि पूरा किया अपनी पत्नी के साथ, द्रौपदी के साथ, महाभारत में इसका वर्णन है। कितनी कितनी विपत्ति आई, कुंती महारानी कहेंगी भगवान से वनवास कृत, वनवास के दुख से आपने हमारी रक्षा किया। जिसका राज्य है, जो राज्य के पूर्ण अधिकारी थे, उनको अपना राज्य छोड़ करके वन में रहना पड़ा। 13वां वर्ष भी उन्होंने पूरा किया अज्ञातवास, जिसको कहते हैं अज्ञातवास। ज्ञात नहीं होना चाहिए कहाँ किस वन में रह रहे हैं, किस गांव में रह रहे हैं, अगर पता लगा तो फिर वनवास। और अज्ञात की अवधि भी भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों ने सफलतापूर्वक बिता दिया। जो 13 वर्ष बीत गया, तब इसके बाद राजा विराट के यहाँ जनकपुर में एक सभा हुई जिसमें महाराज विराट ने पांडवों को प्रकट किया, ये भेद खुला कि ये पांडव हैं, उनके यहाँ नौकरी करते थे वो लोग। ये संवाद द्वारका में भी गया, हस्तिनापुर में गया। तो द्वारका से श्री बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आए मिलने के लिए पांडवों से, क्योंकि 13 वर्ष तक वे नहीं मिले थे। भगवान श्री कृष्ण तो मिल लिए थे, लेकिन लोक में ऐसा ये भेद खुला नहीं था। तो 13 वर्ष के बाद श्री बलराम जी और श्री भगवान मिलने आए और भी कई लोगों को पता चला, संबंधियों को, तो सब विराट नगर में मिलने आए, नेपाल में इस समय है वो, तो भारत का ही अभिन्न अंग था। तो वहाँ एक मीटिंग हुई, तब ये मीटिंग में प्रस्ताव पास किया गया कि पांडवों का महाराज युधिष्ठिर का राज्य मिलना चाहिए। इन्होंने धर्म पूर्वक सभी शर्तों को पूरा किया। तो उसमें सात्यकी जी थे जो भगवान के बॉडी गार्ड हैं, वो साथ में रहते थे। उन्होंने कहा कि तब इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए पूछा गया, तो उन्होंने कहा उपाय क्या, सीधा कौरवों पर आक्रमण करके उन्हें युद्ध में परास्त करके मार करके राज्य ले लेना चाहिए। कई लोग इसके लिए उत्कंठित हैं, ठीक है युद्ध होना चाहिए, परंतु श्री बलराम जी उस सभा में थे और उन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध करना ठीक नहीं है। कौरवों से दुर्योधन से एक बार कहना चाहिए कि भाई ठीक है हम लोगों ने शर्त पूरा किया, हमारा राज लौटा दो। तो सात्यकी जी कहते हैं कि आपके कहने से वो राज लौटा देंगे, झगड़ा जैसा हो रहा था, आप इतना ढीला क्यों बोल रहे हैं, ये आपके मांगने से राज देने वाले हैं क्या। श्री बलराम जी ने कहा फिर भी हम लोगों की तरफ से ऐसा प्रयास करना चाहिए और अपने संबंधी हैं, अपने स्वजन हैं वे लोग भी, इसलिए मेरे विचार से युद्ध करना ठीक नहीं है, उनको समझा बुझा करके राज ले लेना चाहिए। तब सात्यकी जी यहाँ तक कहते हैं तब आप ही चले जाइए समझा दीजिए, बहुत बड़े पंडित हो गए हैं तो आप जाइए समझा दीजिए। तो श्री बलराम जी कहते हैं देखो सात्यकी, यदि मैं जाऊँगा और वे अब मेरी बात की अवहेलना कर दिए तो उसी समय मैं हस्तिनापुर को पूरा ध्वस्त कर दूंगा, पूरा सबको मार डालूंगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सबसे अच्छा है श्री कृष्ण जाए, यह बात करने में अत्यंत कुशल व्यक्ति है, ये किसी को भी कन्विंस कर सकता है, कृष्ण को जाना चाहिए। तो ठीक है सर्वसम्मति से पास हुआ कि भगवान कृष्ण जाएंगे दुर्योधन को समझाने को, उनको संधि दूत बनाया, भगवान तैयार हो गए। श्री बलराम जी के कहने से ही निश्चित किया गया। एक दो घटनाएं ऐसी हो गई थी, एक बार सांब के विवाह में, सांब ने जब लक्ष्मण का हरण किया था, धनुष तोड़ा था, स्वयंवर में जीते थे, तो कौरवों ने इनको बंदी बना लिया भगवान के पुत्र को। उग्रसेन जी कह रहे थे कि चलो चढ़ाई करें द्वारका से हस्तिनापुर और सबको मारपीट कर ठीक कर। तब श्री बलराम जी ने कहा कि नहीं 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 लड़ाई नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। तो वो आए और उद्धव जी के साथ, उद्धव जी उचित सलाह देते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो बलराम जी ने ले लिया उद्धव जी, गए उद्धव जी को भेजे एक बगीचा में ठहर करके और हस्तिनापुर में भेजे उद्धव, जाओ बुला लो और कह दो लड़की के साथ सांब को हाजिर कर मेरे पास। दुर्योधन की लड़की थी, कन्या थी, और सांब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। सीधा कहो कि हम आए हैं और अब ज्यादा झगड़ा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कन्या को वर के साथ उपस्थित करें, बस इतना कहो। तो श्री उद्धव जी गए, कौरवों की सभा लगी हुई थी और उस समय युधिष्ठिर महाराज भीमसेन आदि सब एक मत के थे दुर्योधन आदि से, इस विषय में भेद नहीं था। आकर उद्धव जी ने कहा कि श्री बलराम आए हैं, इस बगीचा में ठहरे हैं और लक्ष्मणा को अर्थात कन्या को और उसको हाजिर करो, ले चलो और द्वारका ले जाए, दहेज के साथ रथ के साथ हाजिर करो। जब उन्होंने कहा तो ये तो बड़े घमंड में थे सब कौरव, ये कहे जाकर बलराम से कहो कि वो अपना पोजीशन और अपने औकात देख करके बात करें, पता है हम लोग कितने बड़े राजा हैं और द्वारका में कोई राज्य है क्या, या तो कुछ नहीं है, और ऐसे लोग हम पर अनुशासन करने लगे, आज्ञा देने चले, कैसा काल विपरीत आ गया। पैर में रहने वाला जूता अब सिर पर चढ़ना चाहता है। हम लोग का यह धार्मिक शब्द, लोग पैर में रहना चाहिए गौरवों के। हम लोग हस्तिनापुर के राजा हैं पूरे भारत के, ये कौन आज्ञा देने वाला है, हम देख लेंगे, हम जाकर कह दो कि नहीं लौटा। अब श्री उद्धव जी गए, उनकी जो बातें हुई थी बलराम जी से कह दिए। श्री बलराम जी को इतना क्रोध हुआ, वो सोचने लगे अभी जादव लोग हस्तिनापुर को चढ़ाई करने की सोच रहे थे और मैंने मना किया, और मैं आकर के शांति की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से बात कर रहा हूँ। पैर में रहने वाला जूता कभी कभी कपार पर चढ़ता है, अब चढ़ेगा। वो सोचते हैं इनकी पिटाई होना आवश्यक, बताओ। ये कहते हैं कि जादव आसन ग्रहण करने योग्य नहीं है, राज्यासन पर नहीं बैठ सकते। अरे जिनके चरणों की वंदना इंद्र आदि करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आसन ही कहाँ है वास्तव में, जगत ठीक नहीं करते। कृष्ण के लिए इस संसार में कोई आसन नहीं, जो वैकुंठ के आसन पर बैठते हैं उनके धरती पर क्या आसन। बलराम जी इस तरह से अर्थ कर रहे हैं, और इसके बाद संपूर्ण नगर को अपने चिन्मय हल से उखाड़ दिया, और उस नगर को हस्तिनापुर को उखाड़ करके और गंगा में सीधे फेंकना चाहते, सारे बाल बच्चा स्त्री कोई भी बच्चे न सब खत्म, निष्कौरविंग करते, कौरवहीन पृथ्वी को करने के लिए पूरा डालना चाहते थे। जब ही उखाड़ लिए नगर डगमग करने लगा, तब सब लोग अपने अपने घर से निकल करके हाय 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 करते हुए और श्री बलराम जी के पास आए, लक्ष्मणा को और शाम को लेकर के, और दहेज दिए, खूब विदाई दिए, माफी मांगे, हमसे गलती हो गई है, तो इनको क्यों संदिग्ध बनाकर भेजा जाए, बताइए। ऐसा करते जो वहां जाकर के और झगड़ा करने लगे, मार दे सबको। श्री भगवान को भेजा गया, सब कुछ हुआ लेकिन नहीं दिया। दुर्योधन ने कह दिया कि एक सुई के छेदने से जितनी जमीन छेदी जाती है उतनी भूमि में नहीं दे सकता बिना युद्ध। युद्ध चाहते थे, युद्ध चाहिए, का परिणाम हुआ 18 दिन में सारी भूमि छोड़कर दुर्योधन चला गया। इस प्रकार सूत जी कहते हैं, सोम राज्यम कितवर हितम, मानव युधिष्ठिर के राज्य को धूर्तो ने छीन लिया था। तब मान लीजिए कोई पूछे, सौनक जी पूछे कि ठीक है भगवान ने राज्य दिला दिया, उनके वध की क्या जरूरत है। वो कहते घात इतवा असतो राज्य कचस्पर्श छता है, असतः राज्य जैसे असत दुष्ट राजा जैसे दुर्योधन आदि, इन सब का वध कराया भगवान ने इसी कुरुक्षेत्र में। क्यों वध कराया, कचस्पर्श छतायु, सब द्रौपदी के केश का आकर्षण करने से सबकी आयु क्षत हो गई थी। यदि एक व्यक्ति केश आकर्षण किया था, दुशासन द्रौपदी का केश पकड़ करके और लाया था उसको दुष्टों की सभा में, लेकिन उस सभा में जो लोग भी बैठे थे और दुशासन के कर्म का अनुमोदन किए थे, उन सबकी आयु उसी समय समाप्त। कच्छ स्पर्श छता है, किसी स्त्री के केशों को छूने का अधिकार उसकी सखियों को है, मां को है या उसके पति को है, लेकिन ये दुष्ट लोग देख रहे थे कि दुशासन केश पकड़ करके खींच कर ला रहा है, कोई मना नहीं किया। वो रो रही थी, बिलख रही थी, अंत में उसने भगवान द्वारकाधीश का स्मरण किया, तभी आकर के उसकी लाज बचा रहे, वस्त्र बढ़ाया। परंतु उस सभा में जितने लोग बैठे थे सब पर वह पाप लगा, इतना पाप टच किया कि उनके परिवार को भी लगा। एक अबला का तिरस्कार हो रहा था, अपमान हो रहा था, भारत की रानी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया। उस पाप से सबकी आयु खत्म हो गई थी। घातित्वा भीमसेन अर्जुन आदि के द्वारा उन दुष्ट राजाओं का वध कराया भगवान ने। और या जित्वा सुमेधस्तम त्रिभिर उत्तम कल्प कही। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के द्वारा तीन अश्वमेध यज्ञ कराया। ये तीन अश्वमेध यज्ञ जो करने की बात आ रही है, ये भाविक कथा संक्षेप, भविष्य में जो भगवान कराने वाले हैं उसको संक्षेप में शिव जी कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के तुरंत बाद यज्ञ कराए, नहीं, अश्वमेध यज्ञ बाद में हुआ। और उस यज्ञ में भगवान द्वारका से आए थे अपनी पत्नियों के साथ, सारे समाज के साथ। और वास्तव में एक यज्ञ हुआ था, अश्वमेध पर्व में लिखा गया एक यज्ञ हुआ था, लेकिन उस यज्ञ में प्रत्येक चीज तिगुना तिगुना दी गई थी, दक्षिणा तिगुना, हवन तिगुना, सब कुछ तिगुना, इसलिए उसे त्रिभी तीन यज्ञ कहा गया। उत्तम कल्प है, उसमें बहुत उत्तम सामग्रियां थी, ब्राह्मण या घी, देश काल जो भी समाज जुटा था बहुत उत्तम था। और उस तीन यज्ञ से ही भगवान ने महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति को ऐसे बढ़ा दिया जैसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की कीर्ति बढ़ती है। भगवान वामन देव अपने भक्त इंद्र की कीर्ति बढ़ाए, परंतु और जो इंद्र की कीर्ति है उस कीर्ति है कि कोई उसका पावन शब्द आदि नहीं लगाएगा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का जस ऐसा फैला तीनों लोकों में, या दिक्षु दशसु दिशासु, दसों दिशाओं में महाराज युधिष्ठिर की बड़ाई होती थी। और पावनम जस, महान पावन जस, पवित्र करने वाला जस युधिष्ठिर का सब जगह फैला। दुनिया के सारे न्यूज पेपर में, टीवी में, जहां तहां युधिष्ठिर महाराज की बड़ाई हुई, स्वर्ग में, यहाँ के लोगों की चर्चा स्वर्ग में कुछ भी नहीं होती, देवता लोग कुछ बात नहीं करते होंगे, इधर एक कीड़े मकोड़े दिल्ली में क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, देवता लोग सब कुछ भी नहीं छापते। जैसे हम लोग गड्ढे में रहने वाले कीड़ों के विषय में कोई अखबार छापेंगे, या मेंढक के विषय में, मच्छर के विषय में हम थोड़े छापते हैं, इस तरह देवता लोग इन मनुष्यों की कोई खास चर्चा नहीं करते। कभी कभी इनके दुख को देख करके आपस में चर्चा करते हैं कि कितने दुखी हैं, पर महाराज युधिष्ठिर का जस देवलोक में गाया जाता था, पाताल में महाराज बलि के दरबार में गाया जाता था, सब जगह युधिष्ठिर की बड़ाई होती थी। किस लिए बड़ाई होती थी कि युधिष्ठिर श्री कृष्ण के भक्त हैं, यही बड़ाई थी। अतः पावनम जस कहा गया, पवित्र जस जिसको श्रवण करके या कीर्तन करके बोल करके कोई भी जीव पवित्र हो जाए। भगवान श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा जाता है, उनका उत्तम जस है। युधिष्ठिर को भी पूर्ण श्लोक कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इनका जस फैला था। बहुत सुंदर जस सभी विषय है, दीक्षु दसों दिशाओं में भगवान ने फैला दिया। अब ये कथा कहकर सुत गोस्वामी भगवान के द्वारका गमन की कथा कह रहे, आमंत्र पांडु पुत्र सैन्य युद्ध संयुत द्वैपायनाद विप्रय पूजित ही प्रतिपूजित प्रसंग वर्ष कौरों के वध की बात आदि कह करके और युधिष्ठिर के यज्ञ और जस विस्तार की कथा कहकर सुत गोस्वामी अब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पांडु पुत्रों से द्रौपदी से, अपनी बुआ कुंती से और अपनी बहन सुभद्रा से पूछ करके, आज्ञा ले करके, और इसके साथ ही साथ पूर्वहित धाम में भगवान वेदव्यास देव आदि ऋषियों से पूछ करके, आमंत्रणा करके, समझा बुझा कर युधिष्ठिर को इस तरह से समझाए, भैया चिंता मत कीजिए, आप अपने प्रजा को प्राण के समान समझ करके उनका पालन कीजिए, प्रजा का पालन कीजिए और शोक मत कीजिए, और मैं जल्दी ही आऊंगा, शीघ्र ही आऊंगा, इस प्रकार से पूछ करके संतोना दे करके और द्वारका चलने के लिए प्रस्तुत हुए। गंतुम कृत मतिर ब्रह्म द्वारका नस्थम रथम आस्थित, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझा बुझा करके, निमंत्रणा लेकर के और पूछ कर आज्ञा लेकर के, अच्छा तो मैं जाऊंगा, मैं जाएगा, मैं शीघ्र ही आऊंगा, बल्कि अभी लोक में लोग ऐसे कहते हैं, अच्छा तो मैं आ रहा हूँ, कहीं जाते हैं तो ऐसे कहते हैं मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, आ नहीं रहे हैं, वास्तव में जा रहे हैं, तो भगवान भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, अच्छा तो मैं आऊंगा, शीघ्र आऊंगा। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं युधिष्ठिर आदि से कि अपना गांव छोड़ करके, अपना नगर, अपना परिवार चार चार महीने बाहर रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 4 महीने भगवान बाहर थे, 18 दिन तो युद्ध चला था, उसके पहले ही वो आ गए थे, और युद्ध के बाद भी सब मिलाकर 4 महीने बीत गए थे। एक गृहस्थ व्यक्ति अपना परिवार, घर, काम धंधा छोड़ करके अपने संबंधी के यहाँ क्या 4 महीने रह जाएगा? आज के युग में तो लोग और बिजी हो गए, सैटरडे संडे को ही छुट्टी मिलती है तो समझते बहुत राहत मिली लेकिन भगवान को देखे, 16,108 पत्नियां थी और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र थे और 1-1 पुत्री थी। इतना बड़ा समाज, सब कुछ भरा पड़ा था, फिर भी सबको छोड़कर के पांडवों के साथ रहा। उस समय उनका रहना बहुत प्रिय लगता था, युद्ध खत्म हो गया था, सारे स्वजन अपने स्वजनों के विरह में रो रहे थे, तो भगवान के रहने से सब सुखी थे, और अब जाने लगे तो सबसे आज्ञा लेके आमंत्र पांडुपुत्रस् च, का अर्थ है पांडुपुत्रों से आमंत्रण किए, और इसके साथ ही कुंती आदि से, च से सैन्य उद्धव संयुत, सिनी नाम के जादव थे, उनके नाती थे सत्य की, उनको सैन्य कहते और उद्धव, सत्यकी और उद्धव के साथ गंतुम कृत मतिम ब्रह्म द्वारका रचना से उपले भे भी धावन के मतराम भरे विमला, अब जाने के लिए तैयार हुए। जब विदाई हुई, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान को विदा किया, कितना कितना सामान दिया होगा द्वारका ले जाने के लिए, कई रथ जा रहे थे, रथों पर प्रचुर सामग्रियां भरी हुई थी, भगवान को विदाई दिए, रथ पर बैठ गए, रथम आस्थित, उनका छत्र अर्जुन पकड़े थे, अर्जुन भी जाने वाले थे, और उद्धव और सात्यकी ये चामर डुला रहे थे भगवान के दोनों तरफ, अभी अभी तैयारी हो रहा था, शायद अर्जुन अभी नहीं आए थे रथ पर, ये बाद में कथा आती है कि वो आ गए, तो अभी जाने के लिए तैयार हुए। उद्धव जी और सात्यकी जी रथ पर चढ़ चुके थे, भगवान भी रथ पर थे, एक तो भगवान के विरह का दुख था कि जा रहे हैं द्वारका, और स्वजनों के मरने का तो सब दुखी थे, पर भगवान अब जा रहे हैं तो और दुख बढ़ गया, तो सब श्री कृष्ण को एक टक देख रहे थे, जिधर जिधर कृष्ण जाते थे उधर उनको विदा देने के लिए, उनको भेंट देने के लिए सब घूम रहे थे। अंत में भगवान रथ पर चढ़े, अब चढ़ने के लिए जब ही तैयार हुए तेन ही उपले भेरी भावंते उत्तराम भय बिहला। उत्तरा जिसके गर्भ में अभिमन्यु थे बच्चा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भागती हुई कृष्ण के पास आई। उपले भी धावंत उत्तरा भय भी वर्णन, भगवान ने देखा कि उत्तरा उसके तरफ आ रही है, भय से बिल्कुल थर थर काँप रही है, व्याकुल है और सामने आ गई। उपले भी धावंत अभी धावंत, भगवान ने देखा कि मेरे पास दौड़ती हुई आ रही है और दौड़ती हुई आ रही है और क्या करे, पाई पाई महायोगी देव देव जगत पते नानन तत्व भय पश्य जत मृत्यु परस्पर। हे देव हे देव हे देव हे जोगेश्वर हे पाई पाई महायोगी हे महायोगी हे देव देव हे जगत पते, यह कहते हुए भगवान के पास दौड़ी आ रही थी, क्योंकि उसके गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र आ रहा था। उस दशा में बेचारी अब किसके पास जाए, सामने से प्रहार हो रहा है, बाण आ रहा है, बाण आने से वो भी मरेगी, बच्चा मरेगा गर्भ में, तो व्याकुल हो गई और सीधे जहां पर बाण आ रहा था उस स्थान से जहां पर थी वहां से सीधे भगवान के पास आए। बचाओ बचाओ पाही पाही रक्षा करो नाथ रक्षा करो रक्षा करो, इस तरह से। उस समय उत्तरा को कोई ध्यान नहीं था, उसके बाल बिखर गए, आंचल इधर उधर हट गया और हाय हाय करते ही भगवान के शरीर में आए। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को मारना चाहता है और वह व्यक्ति उससे बचने के लिए किसी समर्थ व्यक्ति की शरण ले तो कितना कातर भाव से उसे प्रार्थना करेगा। उत्तरा भगवान के पास आ रही थी, अभी धावंती दौड़ करके आ रही, भाग रही थी, बड़े तेज गति से बाढ़ आ रहा था। तो उत्तरा भय से व्याकुल होकर के और भगवान के पास आई और कहने लगे पाही पाही विपसा, दो बार कहा रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। इसका मतलब है कि आप नहीं रक्षा करेंगे तो मैं नहीं बचूंगी या मेरा बच्चा नहीं बचेगा, निश्चित मर जाएगा, इसलिए हे नाथ आप रक्षा कीजिए। सबसे पहले बताया महायोगी, हे महायोगी, योग का अर्थ होता है उपाय, आप समस्त अचिंत उपायों के शक्तियों के आश्रय हैं, स्रोत हैं, आप अघट घटन पटीय से शक्ति वाले हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हमें बचाइए। उसके ससुर अर्जुन भी एक समर्थ व्यक्ति थे, महारथी थे, युधिष्ठिर महाराज भीमसेन ये सब भी बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन उत्तरा किसी की शरण में नहीं गई, किसी की शरण में नहीं गई। भगवान रथ पर थे और ये लोग आयुध लिए थे, भगवान तो कोई आयुध भी नहीं लिए थे, अस्त्र शस्त्र नहीं लिए थे और अर्जुन अभी अस्त्र शस्त्र लिए थे, लेकिन उनकी शरण में उत्तरा नहीं गई। वो जानती थी कृष्ण ही मुझे बचा सकते हैं। वास्तव में भगवान की महिमा, भगवान की महत्ता कृष्ण की उस समय संपूर्ण पृथ्वी में जाहिर बात सब लोग जानते थे। ये आजकल के मूढ़ लोग कृष्ण पर टीका टिप्पणी करते, कुछ जानते नहीं है, बोका लोग कुछ मालूम नहीं है और फिर भी कुछ कृष्ण के बारे में कह दे रहे हैं, कह दे रहे। जरा विचार तो कीजिए, सारे पांडवों का समाज भरा पड़ा है, एक से एक महारथी है जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय पाया है, उनके पास उत्तरा नहीं जा रही है और श्री कृष्ण के पास जा रही है, क्या बात है? क्या इसे पता नहीं चल रहा है कि कृष्ण क्या है? और कहे महायोगी आप अचिंत उपायों के आश्रय हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। तो बच्चा तो भीतर है, उसको कैसे बचाया जाएगा? तो उत्तरा के कहने का आशय था कि आप समस्त उपायों के जानने वाले हैं, आप मेरे गर्भ में प्रवेश करके मेरे बच्चे की रक्षा कर सकते हैं, आप महायोगी हैं, एक सामान्य योगी भी किसी के अंदर प्रवेश कर सकता है, तो आप तो समस्त योगेश्वरों के शिव जी और सनकादिक आदि के भी स्वामी हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कृष्ण हे प्रभु आप रक्षा कीजिए। तो मानो भगवान ने कहा करे इस संकट से बचने के लिए तो देवताओं का आश्रय लिया जाता है, भगवान शिव का, गणपति जी का, ब्रह्मा जी का, सूर्य का, दुर्गा जी का, इनका आश्रय लिया जाता है। तब उत्तरा कहती है देव देव आप देवताओं के भी पूज्य हैं, देव देव का अर्थ देवा नाम अपि देव, आप देवताओं के भी देवता हैं, ये शिव ब्रह्मा गणपति आदि सब आपके दास हैं, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, देव देव जगतपते, और आप तो संपूर्ण विश्व का पालन करने में समर्थ हैं, प्रत्येक प्राणी का, समस्त देवता दानव सबका पालन करने में समर्थ हैं, तो फिर मेरे बच्चे का पालन करने में क्या करना है, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पाही पाही महाजोगी देव देव जगतपते नान्यं पद भयं वशे जत्र मृत्यु परस्पर, ये प्रश्न हो सकता है न करे तुम दूसरे के शरण में क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हारे ससुर अर्जुन समर्थ हैं, युधिष्ठिर समर्थ हैं, भीमसेन समर्थ हैं, इनके शरण में क्यों नहीं जा रही है। उत्तर कहते नान्यं त्वद अभयं पश्य, आपके अलावा भय शून्य किसी को मैं नहीं देख रही हूं, पूरे ब्रह्मांड में भय शून्य आप हैं, आपको किसी से भय नहीं है और सबका भय आप दूर करने में समर्थ हैं। तो क्या ये पांडव लोग और सब भय नहीं दूर कर सकते? नहीं नाथ, नहीं कर सकते। जब मृत्यु परस्पर, इस संसार में देखा गया है कोई व्यक्ति एक दूसरे के मृत्यु का कारण हो जाता है, मार देता है लेकिन जिला नहीं सकता है। आपने सुना होगा, देखे ही हैं सब कि संसार में कितने लोग कितने लोगों को मार देते हैं, किसी कोई मारता है, उसको दूसरा मारता है, मार देते हैं लेकिन मरे हुए को जिला नहीं सकते, संसार में ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सर्व समर्थ है, वे मरे हुए को जिला सकते हैं, किसी भी अस्त्र को विफल कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कहीं भी किसी की रक्षा करने में समर्थ, और उन्होंने जीवित को मरे हुए को जीवित किया है। उनके गुरु संदीपनी उनसे दक्षिणा मांगे कि हमारा बच्चा मर गया है उसको ला दो, तो दोनों भाई गए और बच्चे को ला दो दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में। आजकल के लोग जिलाना तो छोड़ दीजिए, रोग दूर नहीं कर सकते है ना, जिलाने की बात तो दूर। पांडवों में भी इन लोगों ने अनेक लोगों का वध किया था, युधिष्ठिर ने वध किया था, भीमसेन ने वध किया था, अर्जुन ने वध किया था, लेकिन किसी को जिलाए थे क्या कभी? भगवान श्री कृष्ण तो मृतक को जिला सकते हैं, सर्व समर्थ है, कुछ भी करने में समर्थ है। इसलिए उत्तरा सर्व समर्थ भगवान की शरण ले रहे थे, दूसरे की शरण नहीं है, उनको अपने सब परिवार के ही थे। अर्जुन जैसा महारथी अपने पुत्र वधु की जितनी तन्मयता से रक्षा कर सकता है इसको कौन नहीं समझ जाएगा, लेकिन अपने ससुर की शरण न लेकर के श्री कृष्ण की शरण लेना, अरे श्री कृष्ण सब कुछ है, सर्व समर्थ है और सबसे बड़े बंधु हैं। अतः उत्तरा ने इस समय भगवान की शरण लिया, बहुत बुद्धिमानी किया, किसी को भी छोड़ करके कृष्ण की शरण ली। उपलेभे भी धावंते उत्तराम भय भी होलाम पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्य जत्र मृत्यु परस्पर। इसके बाद कहती है अभी द्रवति मामी सरस तप्ताय सो विभो कामम दहत मामनाथो मामे गर्भो निपाते काम। उसकी प्रार्थना थी रक्षा के लिए, रक्षा के लिए, तो फिर कहती है हे इस हे परमेश्वर हे श्री कृष्ण, यह लोहे का दहकता हुआ बाण मेरे गर्भ को लक्ष्य करके आ रहा है, अभी द्रवति माम ईश सरस तप्ताय सो भी हो, ये मेरे तरफ आ रहा है बाण, ऐसे वो आ रहा था आकाश की तरफ से, ऐसे ये लोहे का दहकता हुआ बाण मेरे तरफ आ रहा है, ये मुझे मार देना चाहता है, मेरे बच्चे को मारना चाहता है, कामम दहत मामना तो मामे गर्भ निपाते ताम। फिर कहती है भले यह मुझे मार दे यथेच्छम, कामम का यथेच्छम इसकी जो इच्छा, मेरा वध कर दे, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं ऐसे भी जी करके क्या करूंगी, इस विधवा जीवन की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। वो अभिमन्यु की पत्नी थी, अभिमन्यु युद्ध में मारे गए थे, वैसे ही बेचारी सती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गर्भ में बच्चा था। शास्त्र बताता है कि जो स्त्री गर्भिणी है या जिसका बच्चा अभी छोटा है वो सती नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे की रक्षा कौन करे। तो उत्तरा इसलिए सती नहीं हुई थी अभिमन्यु के साथ कि अभिमन्यु के अंश से, जिनका नाम आगे चलकर परीक्षित महाराज हुआ, वो गर्भ में थे। तो उत्तरा कह रहे कि भले मेरा वध कर दे, मैं मर जाऊं, लेकिन हे प्रभु मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए, क्योंकि यह आपका भक्त है। उत्तरा के वक्तव्य का यही सार था, मेरे गर्भ में आपके भक्तों का महान वंशज है, युधिष्ठिर अर्जुन आदि भगवान के परम भक्त हैं, और उस वंश में बच्चा मेरे कोख में आया है, यह नहीं मरना चाहिए। भले मैं मर जाऊं, मैं तो ऐसे ही मरी हुई हूं, मुझे ये मार दे, लेकिन मेरे बच्चे को ना मारे। इस तरह से प्रार्थना कर रही थी। उपधार जब बचस्तस्या भगवान भक्तवत्सल और पांडव मृदम कर तुम द्रोणे रस्त्र बुद्धे पर, जब उत्तरा प्रार्थना कर रही थी तो भगवान तुरंत समझ गए, वो तो सर्वज्ञ है, वे समझ गए। उपधार जब उत्तरा के एक एक शब्द को भगवान ने ध्यान से सुना और सुन करके समझ गए कि यह अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। अपांडवम इदम कर्तुम, इदम विश्वम, इस विश्व को पांडव शून्य करना चाहता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का बहुत बड़ा अपमान हुआ था, उसका सिर काट दिया गया, केश काट दिया गया था, और उसका धन मणि छीन लिया गया, उसे स्थान से तिरस्कार करके निकाल दिया गया था। इस प्रकार अपमानित होने के कारण अश्वत्थामा बदला ले रहा था। इस पृथ्वी को ही पांडव शून्य करना चाहता था, पांडव के वंश में एक भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। कितने लोग थे इस पृथ्वी पर पांडव के वंश? केवल 6 व्यक्ति थे, गर्भ में परीक्षित थे और 5 भाई पांडव, 6 व्यक्ति थे। तो 6 को ब्रह्मास्त्र मारा एक साथ। तरहे वाथ मुनि श्रेष्ठ पांडव पंच सहायता आत्मनोभिमुखान दीप्तम आलक शास्त्रान उपादर। जिस समय उत्तरा प्रार्थना कर रहे थे और भगवान ने समझा कि द्रोणी का, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ यह ब्रह्मास्त्र है, जिसका प्रतिकार किसी भी अन्य अस्त्र से नहीं किया जा सकता, जिस पर चला दिया जाए उसे मरना ही है, मरना ही है। किसी अस्त्र में शक्ति नहीं है कि ब्रह्मास्त्र को विफल कर दे। जिस समय उत्तरा के गर्भ पर ये प्रहार हो रहा था, उसी समय तरही एवं अथ, उसी समय 5 पांडवों ने देखा कि उनके तरफ लोहे के बाण एक एक आ रहे हैं, 5 बाण। तो उसको देखते ही वे तो क्षत्रिय में जन्म लिए, तुरंत अपने अपने अस्त्र शस्त्र को उठा लिए, अपना धनुष उठा लिए, अपना बाण तैनात किए। लेकिन उस समय ऐसा था, एक तो बात यह थी कि वे लोग ये नहीं जाने कि ये ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र का निवारण वे दूसरे अस्त्र से नहीं कर सकते थे, उनको मरना निश्चित था पांडवों को उस दिन। और दूसरी बात, अर्जुन जानते थे ब्रह्मास्त्र चलाना, अर्जुन के अलावा और कोई नहीं जानते थे। अर्जुन को पता था, इसके पहले उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र का परावर्तन किया था, लौटा लिया था उसको, अश्वत्थामा के द्वारा ही चलाया गया था वो ब्रह्मास्त्र, तो अर्जुन लौटा लिए थे। आज भी चाहते तो एक ब्रह्मास्त्र को विफल कर सकते थे, परंतु अब उनके पास समय नहीं था। ब्रह्मास्त्र चलाने में कुछ स्पेशल मंत्र जपना पड़ता है, और उनको ज्ञान भी नहीं था कि ये ब्रह्मास्त्र है, तो अर्जुन को भी मरना था उस दिन यदि भगवान रक्षा नहीं किए होते। तो भगवान ने देखा, जब उधर उत्तरा पुकार रही थी और भगवान रथ पर बैठे हुए थे, 5 भाई कृष्ण के भावी विरह से दग्ध हो रहे थे, रथ के पास ही वे खड़े थे चारों तरफ भगवान को विदा देने के लिए। उसी समय व्यसनम वृक्ष तत्ते शाम अनन्य विषयात्म नाम सुदर्शने में स्वास्थ्य स्वानम रक्षम के राज्य भगवान ने देखा यह व्यसन यह विपद दुष्परिहार जो है इस समय पांडवों की रक्षा इनके द्वारा नहीं हो सकती। उधर गर्भ में बच्चे की रक्षा करनी है और उसी समय पांचों भाइयों की रक्षा करनी है। व्यसनम वृक्ष तत्ते शाम तत् व्यसन वह महासंकट भगवान ने देखा। भगवान समझ गए कि ये पांडव अन्य अस्त्रों से इस अस्त्र की प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, इनको मरना है। तो तुरंत ही उनके प्रार्थना के बिना पांचों भाइयों की प्रार्थना के बिना भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को प्रकट कर लिया। उनकी इच्छा से ही सुदर्शन चक्र आ गया और सुदर्शन चक्र को लेकर उन्होंने छोड़ा ब्रह्मास्त्र पर, तो पांचों ब्रह्मास्त्र सुदर्शन की ज्वाला से शांत हो गए। ये इस प्रकार की रक्षा किए भगवान ने बिना प्रार्थना के। वे जा रहे थे द्वारका रथ पर थे, उन्होंने देखा कि मेरे भक्तों पर युधिष्ठिर आदि पर इस प्रकार की विपत्ति आई है, तो बिना प्रार्थना के भगवान ने रक्षा कर लिया। इसको कहते हैं स्नेह। द्वारका जाने से पहले भगवान इस तरह पांडवों की रक्षा की। और अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वर हरि। इसके बाद क्या किए भगवान श्री कृष्ण, तो ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप से रहते हैं, अतः वे उत्तरा के भी गर्भ में थे ही परमात्मा रूप से। फिर भी हरि अपने सुंदर श्री कृष्ण स्वरूप से उन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया योग बल से, और वहां जाकर के उन्होंने गर्भ को ढक लिया आवृणोत, अपने चारों भुजाओं से उन्होंने घेरा गर्भ को बच्चे को आवृणोत वैराट्य कुलतंत्र। विराट पुत्री उत्तरा के गर्भ के बच्चे को चारों तरफ से घेरा और गदा घुमा घुमा कर रक्षा कर रहे थे और सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। तो इस तरह से छह ब्रह्मास्त्र शांत हो गए एक समय में। पांडवों की रक्षा और परीक्षित की रक्षा एक ही समय में हुई और भगवान कहीं गए नहीं, रथ पर अविकल भाव से बैठे रहे। ये है भगवान की भगवत्ता, ये है कृष्ण की परमेश्वरता। वे ईश्वर है, परब्रह्म है, भगवान है, कोई मनुष्य नहीं है। अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वर हरि। वे सभी प्राणियों के भीतर स्थित है परंतु फिर भी अपने इसी श्री कृष्ण स्वरूप से वे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, क्योंकि योगेश्वर है, हरि है, भक्तों का दुख हरने वाला है। और आप वृणोत, सुत गोस्वामी कहते हैं गर्भम आवृणोत, उत्तरा के गर्भ को भगवान ने आवृत किया। आवृत का अर्थ है यह नहीं है कि भगवान ने किसी कपड़े से या किसी और से, अपनी भुजाओं में बच्चे को भर लिया और वो बच्चा जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन किया परीक्षित महाराज, इसीलिए तो उनको परीक्षित कहते हैं। वे जब मनुष्य सुंदर मनुष्यों को देखते थे कहीं भी, तो यही सोचते थे हमारी रक्षा जो पुरुष किया वो कौन है, कौन है, परीक्षण किया करते थे। परिकार्थ सर्वतः और ईक्षण का अर्थ दृष्टिपात, बड़े ध्यान से लोगों को देखते थे वो कौन पुरुष है जो हमारी रक्षा के गर्भ में, इसीलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम परीक्षित रखा। और विष्णु रात उनका नाम है क्योंकि विष्णु ने रक्षा करके परीक्षित युधिष्ठिर महाराज को दिया था परीक्षित को, विष्णुना रातम दत्तम, इसलिए उनको विष्णु रात कहा। इस प्रकार श्री भगवान अपने भक्तों से ऐसा स्नेह करते हैं। अरे क्या कभी कोई माँ अपने बच्चे से अपेक्षा करेगी कि हमको पुकारे, हमसे प्रार्थना करे, स्तुति बोले, तब इसकी रक्षा करूंगी? जरा सोचिए, किसी बच्चे पर विपत्ति आ रही हो तो क्या माँ सोचेगी कि ये हमको पुकारे? इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ये अपेक्षा नहीं की कि पांडव उनको पुकारे, भगवान ने इस तरह रक्षा की। ऐसे अवसरों पर भगवान के स्वभाव का पता चलता है कि भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। इस प्रकार रक्षा किया उन्होंने पांचों भाइयों की, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। तब सौनक जी जो सभा में प्रधान श्रोता थे वे आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र का समन कर दिए और गर्भस्थ शिशु की रक्षा किए। ओहो, तो अद्भुत बात है। तब शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, माँ मंस्था हित आश्चर्य सर्वाश्चर्य मय चित यदम माया दिव्या सृजत होते हम कर। हे सौनक जी, आप इसमें आश्चर्य मत कीजिए। ये कोई आश्चर्य नहीं है कृष्ण के लिए, गर्भस्थ बच्चे की भी रक्षा कर लेना और ब्रह्मास्त्र को विफल करके अपने भक्तों की रक्षा करना, ब्रह्मास्त्र को शांत करना और गर्भ में प्रवेश करना, एक ही साथ सब जगह प्रविष्ट होना, ये कृष्ण के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। माँ मंस्था हित आश्चर्य, ये कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वाश्चर्यमय अच्युत है। श्री कृष्ण अच्युत है और सर्व आश्चर्यमय है। जितने भी आश्चर्य की कल्पना की जा सकती है सबके आधार है कृष्ण, वो सब कुछ अद्भुत काम करते हैं, अद्भुत कर्म है। तो आप आश्चर्य मत कीजिए। जो अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा एकदम सृजति अवति हंति इस विश्व की सृष्टि करते हैं खेल खेल में और पालन करते हैं और हंति विनाश कर देते हैं, ऐसे कृष्ण के विषय में आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह तो श्री कृष्ण का स्वाभाविक प्रभाव है और वो एक गर्भ के क्या अनंत गर्भों की रक्षा कर ही रहे हैं। माँ के पेट में बच्चा जीवित आता है यह भी भगवान की ही व्यवस्था है। ये तो क्या पेट कोई जीने का स्थान है? बताइए, किसी सयाने आदमी को किसी बोरा में बंद कर दिया जाए, वो जिएगा क्या? और फिर भी भगवान यहाँ गर्भ में जिला करके ला रहे हैं। अवश्य कुछ राक्षस लोग गर्भ में ही बच्चे को मार देते हैं, राक्षसी उनका तो अलग बात है, तो मनुष्य है ही नहीं वास्तव में। जो अपने बच्चे की हत्या स्वयं करे वह स्त्री तो पूतना है, पूतना भी इतना घातक नहीं, तो अपने बच्चे को नहीं मारने गई थी। अजीब आज का समाज है, अपने को पढ़ा लिखा सभ्य समाज समझता है और अपने बच्चे की हत्या करने से सीखना चाहिए। उत्तरा कहती है कि मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए। इस प्रकार का ध्यान होना चाहिए स्त्रियों को। क्या युग आ गया अपने संतान की हत्या करना, और संसार में और कोई भी प्राणी अपने बच्चे की हत्या नहीं करता, सब पालन करते हैं। तो मैं देखता हूं वृंदावन में बानर अपने बच्चों से स्नेह कितना करते हैं, मैं देखा रोज देखता हूँ, कभी कभी उनको खिलाने का अवसर मिलता है, कितना स्नेह है। मनुष्यों को सीखना चाहिए इन जीवों से। जो भी हो, एक भगवान का अलग स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है, उनके तो सभी संतान हैं, लेकिन जो उनसे प्रेम करते हैं भक्ति करते हैं उनसे भगवान विशेष स्नेह करते हैं। पांडवों की रक्षा किए, इस बात को सुनकर के आश्चर्यचकित सभा हो गई नैमिषारण्य में। इसलिए शुद्ध जी कहते हैं कि माँ मंस्था हित एतद गर्भस्थ शिशु की रक्षा और ब्रह्मास्त्र का समन आश्चर्य माँ मंस्था मन्यस्व आश्चर्य। ये श्री कृष्ण का स्वाभाविक काम। अब देखिए, अगर आश्चर्य की ही बात कोई है, वो अपनी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण इस विश्व की सृष्टि करते हैं। ये सूर्य बनाए हैं, हवा बनाए हैं, पृथ्वी बनाए हैं, सब कुछ एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का पालन करा रहे हैं, पालन करा रहे हैं। इतने जीवों के खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, केवल मनुष्यों के लिए जोड़ी है तो कितना टन दूध, चावल, गेहूं, सब्जी ये सब चाहिए पूरी दुनिया में मिलाकर? ये कौन दे रहा है? ये भगवान दे रहे हैं, ये उनकी व्यवस्था है, कोई मनुष्य नहीं कर रहा है कुछ भी वास्तव में। और कोई कहे कि हम कर रहे हैं तो किसी मनुष्य से, किसी सरकार से पूछा जाए कि हवा का संचार तुम कर रहे हो कोई नियम बना करके, कि सूर्य की स्थापना तुमने किया है, कौन बनाया है सूर्य जिसके प्रकाश की बहुत जरूरत है? अगर सूर्य न रहे तो सभी ठंडे में सिकुड़ कर मर जाएंगे, है ना? सूर्य से उष्मा और प्रकाश दोनों निकलता है। पृथ्वी में अनंत धन है, सब कुछ है, जिसे निकाल निकाल करके हम लोग खाते हैं, पीते हैं, काम चला रहे हैं, ये भगवान की व्यवस्था है। और इसके साथ ही साथ संयम में रखना, विनाश कर देना, यह भी भगवान की माया शक्ति का कार्य है। जो अपनी एक साधारण शक्ति से इस विश्व की सृष्टि करते हैं, इसका संचालन करते हैं, पालन करते हैं, मेंटेन करते हैं और इसका विनाश करते हैं, उन कृष्ण के लिए ये क्या आश्चर्य है? एक बच्चे की रक्षा कर लेना माँ के गर्भ में और ब्रह्मास्त्र का समन करना, ये कोई आश्चर्य नहीं। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मास्त्र का समन किया, पांडवों की रक्षा किया, तब सूत जी कहते हैं, ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त आत्मजय सह कृष्णया प्रयाणाधिमुखम कृष्णम इदमाह प्रथासती। वहां पर रथ के पास प्रथा भी थी, भगवान की बुआ, भगवान को विदा दे रही थी वह भी। प्रथा ने जब देखा कि हमारे पुत्र युधिष्ठिर आदि ये ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गए, पूरा पूरा बच गए, मरे नहीं, ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त है, विनिर्मुक्त है, विशेषण निर्मुक्त है, पूरा पूरा मुक्त हो गए, बच गए, तो वहां पर वो द्रौपदी जी के साथ, अपने पुत्र वधु के साथ है कुंती थी, तो अपने पुत्र वधु के साथ और अपने पुत्रों के साथ ही प्रयाणाभिमुखम कृष्णम, द्वारका के लिए प्रयाण करने वाले, प्रस्थान करने वाले कृष्ण से इदम आह कृतासन, वो परम वैष्णवी सती शिरोमणि कुंती भगवान श्री कृष्ण से यह कहने लगे। प्रयाणाभिमुखम कृष्णम, प्रयाण अभिमुखम, द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत कृष्ण से यह कहने लगे, बिल्कुल स्पष्ट कथा है। भगवान के इस अद्भुत प्रभाव को, ब्रह्मास्त्र समन को उसने देखा अपने आंख से, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़े बड़े महारथियों को परास्त करा देना अर्जुन के द्वारा, और अनेक नारायणास्त्र ब्रह्मास्त्र आदि शस्त्रों को विफल करने की कथा उसने सुना था। यहाँ की बात कुंती ने सुना था, और हस्तिनापुर तो डायरेक्ट देख रही है, देख रही है इस प्रकार का प्रभाव। तो कुंती के मन में आया कि ओहो, मैं कितना अपराधनी हूँ, कितनी अपराधनी हूँ, मैं भगवान से प्रणाम कराती हूँ। पहले तो यही वो मानती थी कि ये हमारे भाई के पुत्र है, हमारे भतीजा है, हमारे भाई वसुदेव जी के पुत्र है। तो माँ का जैसे भाव होता है, ऐसा भाव कृष्ण के प्रति था बुआ का। कृष्ण को आशीर्वाद देती थी, जब कृष्ण प्रणाम करते थे तो कुंती आशीर्वाद देती थी, चिरंजीवी भव, विजयी भव, सुखी भव, कृष्ण को आशीर्वाद देती थी। और कृष्ण के इस महाप्रभाव को, अद्भुत ऐश्वर्य को, भगवत्ता को जब उसने देखा और सुना, कुंती का चित बदल गया। वो सोचने लगी कि अरे ये तो ईश्वर है, ये भगवान है, कितना महान है, और मैं कितनी अभागनी हूँ, अपराधनी हूँ, कैसे भगवान से मैं चरण छुआती हूँ, चरण छूकर मुझे प्रणाम करते हैं लोग प्रतिदिन। तब उसके मन में ऐश्वर्य का इतना भाव आया कि वो लगी माफी मांगने, और भगवान को ही प्रणाम करना चालू की उस दिन कुंती। द्वारका के परिक्रमा का ऐसा ही स्वभाव है, कृष्ण को अपने संबंधी मानते हैं, कोई अपने भाई मानता है, कोई अपने पुत्र मानता है, कोई सखा मानता है, द्वारका की कोई पत्नी भगवान की अपने प्रियतम पति मानती है। लेकिन जब ऐश्वर्य बहुत ज्यादा आविर्भूत होता है तब अपने प्रेममय व्यवहार को भी वे अपराध समझने लगते हैं। जैसे इसी कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने प्रार्थना किया भगवान कृष्ण से, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह से इस विश्व की सृष्टि करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं और कंट्रोल करते हैं, मैं जरा देखना चाहता हूँ कैसे सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है। वो रथ पर खड़े थे और अपने देह में ही विश्वरूप दिखाया, विराट दिखाया। तो श्री अर्जुन देख रहे थे कि ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से प्रकट हो रहे हैं, शिव जी आंखों से प्रकट हुए, इंद्र भुजा से प्रकट हुए, और कैसे कैसे योद्धा मर रहे हैं, भगवान के मुख में समा रहे हैं, सब कुछ देखा, अग्नि देखा और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सब कुछ भगवान से निकलते हुए। और एक दृश्य जब उन्होंने देखा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो योद्धा खड़े हैं वे सब कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, कोई काट करके लाश नहीं, खड़ा खड़ा शरीर पूरा कृष्ण के मुख में, और वे दांतों से कच कच दबा रहे, फच फच खून निकल रहा है और ऐसे खाते जा रहे हैं। जब इस दृश्य को अर्जुन ने देखा तो उनका तो एकदम होश उड़ गया और कांपने लगे, ये क्या है, ये क्या है। तो भगवान से ये भी पूछते हैं, आख्या ही में को भगवान उग्र रूप, आप मुझे बताइए कि इतने भयंकर रूप वाले आप हैं कौन। वो ये भी भूल गए कि हमारा मित्र कृष्ण है, आप कौन है, कौन है। और मुझे न तो पूर्व समझ में आ रहा है, न पश्चिम, न ऊपर, न नीचे, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, मैं तो ऐसे ही डर करके मर जाऊंगा, आप कौन है बताइए बताइए। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपको आगे से पीछे से बाएं से दाएं सब ओर से प्रणाम कर रहा हूँ, आप सारे जगत के पिता हैं, आप कौन है ये बताइए, कौन है, कौन है। भगवान कहते कालोस्मी लोक का क्षयकृत प्रवृत्त, तुमको पता है मैं काल हूँ और सभी लोगों को क्षय करने पर प्रवृत्त हुआ हूँ, रीते तम भविष्य सर्वे, तुम नहीं युद्ध करोगे फिर भी यहाँ से कोई बच कर जाने वाला नहीं है, मैं सबको मार चुका हूँ, देखो किस तरह से मार चुका हूँ, देखो मरा हुआ दुर्योधन को देखो, कर्ण को देखो, और अपने पक्ष के लोगों को भी मरा हुआ देखो, मैं दिखा रहा हूँ अपने मुख में। अर्जुन देख करके थर थर कांपने लगे और वे समझ गए कि ये कृष्ण ही है, उनके कहने से समझ गए कृष्ण है। तो कहते हैं बहुत अपराध किया है, आपको मैं सखा कह रहा था, अपना फ्रेंड कह रहा था, मित्र कह रहा था, आपको मैं जादव कभी कभी कहता था, आपका नाम लेकर आपको पुकारता था, हे कृष्ण हे जादव हे सकेती, आपको कृष्ण कहा डायरेक्ट, हे कृष्ण सुनो चलो घूमने ऐसे कहता था, तो कृष्ण कहता था आपको, जादव कहता था एक जदवंश में उत्पन्न व्यक्ति, और अपना मित्र कहता था मैं कहाँ कीट पतंग और आप कहाँ महान, और मैं आपको अपना सखा कह दिया, और उस पर भी बहुत अपराध किया कि मैं सारथी बनाया आपको, आपसे अपना रथ ड्राइव कराया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। किस तरह से क्षमा कीजिए, अर्जुन तीन उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मित्र अपने मित्र के अपराध को सह लेता है ऐसे हमारी गलती को माफ कीजिए, जैसे पिता अपने पुत्र की गलती को सह लेता है क्षमा करता है ऐसे हमारी गलती क्षमा कीजिए, और जैसे प्रियतम पति अपने प्रिया के पति पत्नी के अपराध को सह लेता है ऐसे हमारे अपराध को सह लीजिए। और अपराध क्या था, कृष्ण से रथ हकवाना, कृष्ण को कृष्ण कहना, सखा कहना और जादव कहना, यही अपराध है। जबकि भगवान इससे बहुत प्रसन्न थे, बड़े सुख का आस्वादन करते थे, अर्जुन जब उनको मित्र कहते थे रथ हकवाते थे तो भगवान बड़े आनंद में थे। लेकिन जब अतिशय ऐश्वर्य भाव उदित हुआ अर्जुन के मन में तब वे इन सब प्रेम की क्रियाओं को अपराध मानने लगे, मैं अपराध कराया हूँ, ये कराया, वही हालत माता कुंती की है। कुंती ने इतना ऐश्वर्य देखा भगवान का, इतना ऐश्वर्य देखा कि अब सोचने लगे कि मैं अपने भतीजा मानती हूँ, ये बहुत बड़ा अपराध है, अपने भाई का पुत्र मानती हूँ। और मैं कभी कभी कहती भी थी वासुदेव, हे वासुदेव के पुत्र, या आशीर्वाद देती थी, मंगल कामना करती थी, जो समस्त मंगल के निधान है उनकी मंगल कामना मैं करती। और सबसे तो खराब बात यह है कि मेरा चरण छू करके प्रणाम करते थे, जैसे देवकी को प्रणाम करते हैं, तो मैं बहुत अपराध की हूँ। इस तरह से अपराध की भावना से भगवान कृष्ण से कुंती महारानी कुछ कहने लगे। कुंती का यह जो स्तव है, स्तोत्र, कुंती की प्रार्थना भगवान कृष्ण के चरणों में, यह भागवत की पहली स्तुति है। श्रीमद् भागवतम ऐसे ही सबसे महान ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में भी सर्वप्रथम स्तुति कुंती महारानी के मुख से। इससे सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने का, सुनने का अधिकार एक समान है स्त्री पुरुष को। तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों को पढ़ना चाहिए और स्त्री को नहीं। स्त्री के मुख से ही कृष्ण गुणगान दिया गया पहले बार कुंती महारानी, वो कृष्ण को जानती थी पूरा पूरा। तो इस प्रसंग को हम लोग कल से सुनेंगे। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।